हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आखिरकार दीवा के सामने ये सच आ ही गया था कि आर्यांश उससे इतनी नफ़रत क्यों करता है। ये सब उसकी दोस्त सहर गुप्सा की वजह से था, जिसे आर्यांश प्यार करता था। देखा जाए तो दीवा खुद नहीं जानती थी कि उस एक्सीडेंट के बाद आखिर क्या हुआ था। क्या सच में उसके माता पिता उसके साथ ऐसा कर सकते थे? इस बारे में दीवा को यकीन नहीं हो रहा था। वो बस एक सच जानती थी, और वो ये था कि अगर उसके सामने ये ऑप्शन रखा जाता कि उसे खुद या सहर में से किसी एक की जान बचानी है, तो वो सहर को ही चुनती। न्यूयॉर्क की सड़क पर दीवा घुटनों के बल बैठकर रो रही थी, और उसके दिमाग में उस दिन की यादें चल रही थीं जब उसका और सहर का एक्सीडेंट हुआ था। ये लगभग 5 साल पहले की बात थी, जब दीवा हाई स्कूल म्यूज़िक क्लासेस के लिए गई थी। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वो शहर का एक रेप्यूटेड स्कूल था, और सहर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। उनकी दोस्ती एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान हुई थी। दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती और लगती थीं। म्यूज़िक क्लास शुरू होने से पहले सहर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, इतना टाइम कौन लगाता है? दीवा उससे अलग हुई और जवाब में बोली, एक्स्ट्रा क्लासेस में उलझ गई थी। कहीं वो एक्स्ट्रा क्लासेस रक्षित सर के साथ तो नहीं थी? सहर उसे छेड़ते हुए बोली। उसकी बात सुनकर दीवा के गाल लाल हो गए थे। उसने सहर के हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, वो मेरा सीनियर है, और हाँ, हम दोनों अभी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, वो बस मुझे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन तुमने तो बताया था कि वो भी तुम्हें पूरी अटेंशन देता है। आई विश कि तुम दोनों अपनी ये शर्म छोड़कर एक दूसरे के सामने अपने दिल की दाद बता ही दो। अब हर कोई मेरे क्यूटी पाई की तरह नहीं होता जो खुलकर अपनी फीलिंग्स बताता हो, सहर ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। वो आर्यांश को इसी नाम से बुलाती थी, और उसने अभी तक दीवा को आर्यांश का नाम तक नहीं बताया था। तुम बस उसके बारे में बात करती रहती हो, ना कभी मिलवाया है, ना फोटो दिखाई, और ना ही उसका नाम बताया है, दीवा ने नाराज़गी जताते हुए कहा। ऐसा समझ लो कि आज तुम्हारी हर एक इच्छा मैं एक साथ पूरी करने वाली हूँ। उसका नाम भी बता दूंगी, और फोटो की क्या ज़रूरत है जब हम उससे मिलने जा रहे हैं, सहर ने खुश होकर बताया। क्या सच में? दीवा बोली। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि जो सहर आर्यांश का नाम बताने तक से हिचकिचाती थी, वो आज उसे खुद उससे मिलवाने जा रही थी। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फेवरेट म्यूज़िक क्लास को डिच करना होगा, सहर ने जवाब दिया। सहर को म्यूज़िक से जितना प्यार था, उतना ही आर्यांश से, और दीवा की म्यूज़िक के लिए दीवानगी वो अच्छे से जानती थी। वो पूरे दिन उस म्यूज़िक क्लास और सहर से मिलने का इंतज़ार करती थी। तुम्हारे लिए कुछ भी, दीवा ने मुस्कुराकर कहा। तो चलो फिर चलते हैं, सहर ने दीवा का हाथ पकड़कर कहा। चलते हुए वो टैक्सी का इंतज़ार करने लगी। सहर ने दीवा की तरफ देखकर कहा, सच कहूँ तो मुझे लगा कि जब मैं तुम्हें म्यूज़िक क्लास बंक करने का कहूँगी तो तुम मना कर दोगी। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, फिर म्यूज़िक क्लास क्या? दीवा ने हंसकर जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में उन्हें एक टैक्सी मिल गई थी, जिसमें बैठकर वो आर्यांश से मिलने जा रही थी। लेकिन वो दोनों ही नहीं जानती थी कि ये उन दोनों का साथ में आखिरी सफ़र है। उनकी कैब का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। आर्यांश वहाँ सहर के आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन सुबह उसे सहर के मरने की ही खबर मिली थी। उसने आज सहर को अपनी असलियत बताने का सोचा था। कौन जानता था कि वो उसे कभी बता ही नहीं पाएगा कि जिस आर्यांश को वो मामूली सा इंसान समझती है, वो शहर के सबसे अमीर ख़ानदान का वारिस था। दीवा, दीवा उठो, तुम्हें क्या हो गया है, जवाब दो दीवा, प्रियंक दीवा को झिंझोड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। दीवा को एहसास तक नहीं हुआ कि कब सहर के बारे में सोचते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। दीवा की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रियंक खुद को भी समझ रहा था। जब दीवा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश दीवा को सब कुछ सच बताकर वापस अपने दादाजी के घर पहुंच चुका था। आर्यांश को लगा कि वहां वो थोड़ा टाइम सुकून से बिताएगा, लेकिन पृथ्वी कपूर, सुनिधि कपूर, मनीष और समीक्षा उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे देखकर साफ जाहिर था कि वो उससे गुस्सा थे। मनीष और समीक्षा दीवा और आर्यांश के रिश्ते की सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी वो आर्यांश की वजह से चुप थे। जैसे ही आर्यांश उनके पास गया, पृथ्वी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जानता उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगे। उसकी वजह से मेरी पूरी बर्थडे पार्टी बर्बाद हो गई। इस दिन को हमेशा मैं अपनी अच्छी यादों के तौर पर संजोकर रखना चाहता था, लेकिन लगता नहीं कि मैं कभी इन सब के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी कर पाऊंगा। क्या ज़रूरत थी अपनी मिस्ट्रेस को पार्टी में उठाकर लाने की? मिस्ट्रेस शब्द सुनते ही आर्यांश को एक झटका सा लगा। वो शब्द दीवा के लिए किसी गाली से कम नहीं था। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, बल्कि एक होनहार और काफ़ी काबिल डॉक्टर थी। लेकिन आज दीवा की ये पहचान बन गई थी तो सिर्फ और सिर्फ आर्यांश की वजह से। यही तो वो चाहता था, पर न जाने क्यों ये शब्द उसके सीने पर एक तीर की तरह लगा। आर्यांश कुछ कह पाता उससे पहले सुनिधि ने कहा, अगर आगे से किसी लड़की के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उसके साथ रिश्ते में रहो तो उम्मीद है कि शर्तों में ये भी जोड़ लेना कि वो तुम्हारी फैमिली और रेपुटेशन से दूर रहे। अच्छा हुआ जो तुम्हारे दादाजी ने मीडिया को इस पार्टी से दूर रखा था, वरना नतीजा तुम अच्छे से जानते हो। छोड़ो सुनिधि, तुम भी किसे समझा रही हो? आजकल की जेनरेशन बस खुद के बारे में सोचती है, उन्हें अपने बड़ों से कोई लेना देना नहीं होता और इज्जत को तो वो एक खेल समझती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा आर्यांश भी ऐसा निकलेगा, पृथ्वी ने कड़े शब्दों में कहा और सुनिधि के साथ वहां से चले गए थे। उनके जाते ही आर्यांश ने गहरी सांस ली और समीक्षा और मनीष की तरफ देखा। उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वो भी आर्यांश को काफी कुछ कहना चाहते हैं। अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप भी बोल दीजिए, आर्यांश ने थके स्वर में कहा। मनीष उसकी आवाज से उसके दिल के दर्द को समझ पा रहा था। वो समीक्षा को रोकना चाहता था, लेकिन समीक्षा ने भारी आवाज में गुस्से में कहा, तुमने दीवा के साथ अच्छा नहीं किया आर्यांश। तुमने ऑफिस में साफ इशारा किया था कि तुम्हें वो पसंद है। मैं सपने देखने लगी थी, सोचा था कि अब तुम भी खुश रहोगे और आगे बढ़ोगे, लेकिन भूल गई थी कि आर्यांश कपूर अब मेरे बेटे से ज्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, जो उसी डील के साथ आगे बढ़ता है जो उसे फ्यूचर में फायदा दे। समीक्षा नाराज होकर वहां से चली गई थी। मनीष आर्यांश के पास आया। वो कुछ बोलता उससे पहले आर्यांश ने कहा, प्लीज अभी कुछ मत कहिए, मैं पहले ही थक चुका हूँ। मुझे पता है आप सब यही कहेंगे कि मैंने गलत किया है, पर हमेशा से मेरा यही करने का इरादा था। आप अच्छे से जानते हैं कि एक बार मैं जो सोच लेता हूँ उसे किए बिना पीछे नहीं हटता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ, तुमने जिस भी वजह से ये किया है ये सोच लो कि तुम्हें फ्यूचर में पछताना न पड़े। और क्या सच में तुम जीत गए हो आर्यांश? मनीष ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, बस मुझे अब थोड़ा आराम चाहिए। एक दो दिनों में सब ठीक हो जाएगा और हाँ, मैं भी इन सब से बाहर निकलकर अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ पाऊंगा, आर्यांश ने जवाब दिया और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था।
जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, आर्यांश को एक नोटिफिकेशन मिला। उसने गोयंका एम्पायर्स के लिए जो प्लान किया था वो भी आज ही के दिन पूरा हो चुका था। गोयंका एम्पायर्स के स्टॉक्स रातों रात गिर चुके थे। मार्केट में ये खबर फैल चुकी थी कि जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ गोयंका एम्पायर्स ने डील की है उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसी के साथ सभी इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। एक ही रात में गोयंका एम्पायर अर्श से फर्श पर आ गिरा था। इतनी बुरी हालत तो रक्षित ने भी नवीन गोयंका की नहीं की थी जितनी आर्यांश ने कर दी थी। आप लोगों को भी अपने कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन हाँ, इस बार आपको बचाने के लिए कोई आर्यांश कपूर नहीं आएगा। उम्मीद है कि इन सब के बाद आपकी बेटी के अंदर इतनी हिम्मत रहे कि वो अपनी दोस्त की लाश तो ना देख सकी, लेकिन अपने माँ बाप की लाश को देखना उसे नसीब हो जाए, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा। आर्यांश का कहा एक एक शब्द सही साबित हो रहा था। इस वक्त नवीन और प्रार्थना घर पर अकेले थे। पिछले 10 घंटों में उनकी कंपनी के साथ जो हुआ था वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऊपर से दीवा भी उनसे दूर थी। हम बर्बाद हो गए हैं प्रार्थना, हमारे इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और ये सब कुछ बिक जाएगा। सब कुछ बिकने के बाद भी हम कर्ज में रहेंगे। मैंने मेरी दीवा के लिए ये फ्यूचर कभी नहीं सोचा था। सच कहूँ तो आज मुझे रक्षित की हालत, उसका गुस्सा और बदले के कारण का सही एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता ये किसने किया है, पर एक बात साफ है, मैं अपनी आंखों से ये सब होता नहीं देख सकता हूँ, नवीन ने आंखों में आंसू लिए कहा। अच्छा हुआ ना जो दीवा यहाँ नहीं है, उसने बिजनेस के बजाय मेडिकल प्रोफेशन चुना। इस वजह से मैं हमेशा उससे गुस्सा रहती थी, लेकिन अच्छा है जो वो दूसरे फील्ड में गई। ये सब खत्म होने से पहले हम दीवा के लिए सारे अरेंजमेंट करके जाएंगे। सिर्फ आप अकेले ही नहीं, हम दोनों साथ में दुनिया को अलविदा कहेंगे, प्रार्थना ने रोते हुए कहा। ऐसा मत करो, हमारी दीवा अकेली रह जाएगी। काश मैंने लालच ना किया होता और उस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट में औरों को नहीं जोड़ा होता तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता, नवीन ने अफसोस भरे लहजे में कहा। ये उसके लिए मुश्किल होगा, पर वो खुद को संभाल लेगी, ऊपर से आर्यांश भी उसके साथ है। अच्छा क्यों ना हम आर्यांश से मदद मांगे, हम उससे पैसे लोन पर ले लेंगे और उसे वापस कर देंगे। वो बाकी इन्वेस्टर्स को थोड़े टाइम तक रोक कर भी रख सकता है, तब तक हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्रार्थना ने सुझाव दिया। जैसे उनके हालात चल रहे थे ऐसे में उन्हें मरने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में आर्यांश ही था जो उनकी मदद कर सकता था और एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही काफी थी। ऐसे में दीवा को सब पता चल जाएगा और वो आर्यांश के साथ ही गई है, हमें उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए। वो घबरा जाएगी, चिंता मत करो, एक पल के लिए मैं कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन हाँ, आर्यांश हमारी मदद करेगा तो हम सब संभाल लेंगे, नवीन ने हिम्मत करके कहा। प्रार्थना और नवीन ने आर्यांश और दीवा के आने का इंतजार किया, लेकिन साथ ही वो कोई सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार थे। इसके लिए उन दोनों ने पूरी तैयारी कर ली थी।